ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद कल दोपहर सिंगापुर पहुंचे। वे सिंगापुर के अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर वहां गए हैं। सिंगापुर के गृहमंत्री के शनमुगम ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। सिंगापुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी के सम्मान में निजी तौर पर रात्रि भोज का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री वोंग के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत सिंगापुर के साथ मित्रता को बहुत महत्व देता है। आज दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वे सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई भी देखने जाएंगे। प्रधानमंत्री का सिंगापुर की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूती मिलने की संभावना है। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। आसियान संगठन में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत भी है। इससे पहले कल भारत और ब्रुनेई के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत क्षेत्र नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो दोनों देशों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में देशभर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। देश में हर साल 5 सितंबर को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देशभर से 50 शिक्षकों का चयन किया है। इसके अलावा उच्च शिक्षक विभाग तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 16-16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। अमृत उद्यान आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों के लिए विशेष रूप से खुला रहेगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि प्रवेश राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर और अन्य जिलों का आज केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल दौरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन अतिरिक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल के नेतृत्व में ये दल बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन और प्रभावितों से बात करेगा। इस बीच आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की कुल 26 टीमें तैनात की गई हैं। वे केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ तालमेल कर राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। आपदा मोचन बल ने अब तक 319 लोगों को बचाया है और लगभग 12,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जा रही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से रक्षा और परिवहन से संबंधित सामग्री, अभियांत्रिकी, उपकरण और प्रौद्योगिकी में नवीनतम तकनीकी विकास तथा वैकल्पिक ऊर्जा और ताप प्रदान करने वाले उपकरणों पर 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 15 से अधिक देशों के लगभग 600 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इसमें लगभग 300 स्टॉल होंगे और करीब 20,000 आगंतुकों के आने का अनुमान है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत अभिनीत फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट तुरंत दिए जाने का अनुरोध ठुकरा दिया है। अदालत ने कहा कि केंद्र ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया है कि फिल्म के बारे में पड़ताल अभी बाकी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वो याचिका को खारिज नहीं कर रही है, बल्कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को इस महीने 18 तारीख तक आपत्ति की समीक्षा पूरी करने का निर्देश दे रही है। फिल्म इमरजेंसी देश में 1975 में लगाए गए आपातकाल की पृष्ठभूमि में जीवनी पर आधारित फिल्म है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।